Mantan.
नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो
जी।
और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, इन ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
शिशिर जी, भी आपने जेम की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, एमएसएमई संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
आपने जो 3 खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TREDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि एमएसएमई जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी।
जी
इसका फायदा क्या है और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है और इन एमएसएमई को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और एमएसएमई को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त है। और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलके $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड एसएससी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी। अब 1,60,00,000 है और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में, और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं आता,
आसानी होती है।
बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप, अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7%, 7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है
जी।
अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें, तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का। अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं। अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास है जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दे। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है, तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है। उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है। दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं। अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं, और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला है। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% MSME का हो चुका है।
जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
मंथन।